दुर्योधन भट करण मिली गए द्रोण के पास। कौरव पति कहने लगा होकर निपट उदास। मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, आज राठौर के शिष्य के माध्यम से महाभारत युद्ध काल की वो विलक्षण घटना मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि जब पितामह भीष्म सरसैया पर गिर पड़े, 11वें दिन युद्ध का अधिपत्य गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में आ गया। एक दिन युद्ध कर लिया द्रोणाचार्य ने, संध्या की पावन वेला में द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन और अंग रक्षक जो दुर्योधन का गढ़ था ये पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि 10 दिन बीते आज गुरु जी, एक और युद्ध दो है ठहराए पांडव वंश से, आज तलक एक चुहिया हाथ लगी है नाई। अरे दादाजी ने जानी गमाई, जानी कहा रची है करतार, एक दिन आज पूरो हुई गो गुरुजी आप बने सरदारी। बड़ा उदास होकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बोला, अरे गुरु जी कौन सी वो उलझन है, बुद्धि काम देती है ना, ताकत है वो पांडव दल की या दुर्भाग्य सुयोधन राय। पूछने लगा है दुर्योधन, गुरु जी बात क्या है जो हम पांडवों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे? तो कर्णराज ने कहा कि दुर्योधन आप शायद नहीं जानते कि गुरु द्रोणाचार्य का स्नेह अर्जुन पर जितना है उतना स्नेह तेरे ऊपर नहीं। अरे कहीं कर्ण ने बात तो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं मेल प्रेम का रहा दिखाए, अरे रंग दुरंगी है रंगत का, पुरुषे शिष्य हना नहीं जाए, दया अगर दिल में नहीं होती बनते आज युधिष्ठिर राय, हाथ में आकर अपना दुश्मन कोई ऐसे छोड़त ना। युधिष्ठिर बंधन में आ गए थे लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने जानबूझकर महाराज युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया, ये सब स्नेह का ही फल है। दोस्तों एकदम से गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में क्रोध के शोले धधक गए और कहा, कर्ण दिमाग से बात करो। अरे तीक्ष्ण वचन सुन करण राज के, कदम उबल पड़े ही गुरु राज के, तरकस धनुष एक लंग फेंको अपनु फेंकी दो तो सिर ताजी। अरे मेल दिख रो पांडव दल से तो धोखो न खावो सुयोधन राय, अरे हमने अपनो भार उतारो तो नायक और तरकस ये लो राज मुकुट महाराज कई। और जिस पर हो विश्वास तुम्हारो बाको रखो शीस पर तारी। अरे पापी पेट सुनाए रो बोको कैसी व्यंग भरी बोछारी थे। अरे ना कच स्वार्थ मेरे डूबो है तो पापी पेट तो धिकारी। दोस्तों द्रोणाचार्य की आंखों में खून के कतरे थे और कहा चांडालो जब हेरे आपुष में इतनी फूट और तकरार तो त्रिभुवन और तिरपालन में निश्चय हो तुम्हारी हारी। हर धनुष मुकट एक और फेंक दो चल भय द्रोण गुरु तत्काल। चरण पकड़ के द्रोण गुरु के रोबन लगते आज नरपाली। दोस्तों गुरुजी को नाराज जब देखा तो युवराज दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भर के बोला गुरुजी ऐसा मत करो ऐसा मत करो। अरे शांति गुरु जी शांत गुरु जी के शो द्वंद फैलाई थी और हाथ लगाए मेरी नई आंखों किश्ती रे मझधार डुबाई। अरे हम बालक अज्ञान गुरु जी आप नीत निपुण गुण धाम और लेकिन उचित नहीं है गुरु जी युद्धमिया कहो तो बिरामी। दोस्तों दुर्योधन को करुण क्रंदन करते हुए जब द्रोणाचार्य ने देखा तो विप्र देवता का हृदय पिघल गया और दुर्योधन की भुजा पकड़कर अपने हृदय से लगाया और कहा कि बेटा दुर्योधन चिंता मत कर। दुर्योधन को तो ले आज सुयोधन राय। अरे साक्षी है तो धरती माता की आन है विश्वरे रूप करतारी। कल मारूंगा के महाभारत में कल से छठो भयो रे शरदा। संकल्प किया कि दुर्योधन ब्राह्मण का अंश नहीं, अगर कल महाभारत के युद्ध में पांडवों में से एक विशेष महारथी का मैंने वध न कर पाया। बोले हैं एक ही बार के बारन धार महाजग धार के बार प्रचारों देता हूं कार बिदार सबे सरदार बिदार के दार उतारो। आनी है तुझ मान रहे न गहे जी मोहन छोड़ बिचारो। पांडव पीर हनुन रण में कल तो प्रभु आनन अस्त उधारो। मैं हथियार छोड़ दूंगा कि अगर प्रतिज्ञा कल मैं पूरी अपनी न कर पाया। ले लो द्रोण गुरु संकल्प नकुल धर्म से बोले। ले लो द्रोण गुरु संकल्प साथियों, इधर गुरु द्रोणाचार्य ने संकल्प ले लिया कि कल मैं पांडव दल से एक महारथी का वध करूंगा। इधर दुर्योधन का शिविर वो सभा इस उद्देश्य पर विराम की गई और दोस्तों इधर पांडवों के शिविर में हलचल मच गई। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम ये सभी बैठे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के महान वैज्ञानिक नकुल से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भैया नकुल,
हाँ,
ज्योतिष शास्त्र की ओर झांक करके ये बताओ कि कल के युद्ध का भविष्य फल क्या है। तो नकुल ने अपने भैया युधिष्ठिर से कहा कि भैया गजब भवे भारत में, चल लो द्रोण गुरु ने धार, समर भूमि में तो निश्चय जूझे अपनो कोई प्राण आधार। अरे चक्र व्यूह की रचना हुई है, अपनी फौज बढ़न नहीं पाए, धोखा देकर किसी वीर को लड़ भिड़ के बेदी तो गिराई। नकुल ने कहा कि भैया अर्जुन घर पर नहीं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के साथ दोस्तों उस समय दक्षिण में त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा से युद्ध करते हुए संक्षप तक की ओर निकल गए थे और चक्रव्यूह की कल रचना होगी। बिना भैया अर्जुन के चक्रव्यूह में लड़ने की विद्या किसी को ज्ञात नहीं। तो दोस्तों महाराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर गए। अरे इतनी सुन के धर्म पुत्र जब धरती पे गिरे तमारो खाए, तोर ठंडो जो सफड़ो तो राजा को तो भर गया जेठ कहीं ती बिल खाई। अरे चक्र व्यूह समर को लड़बो बिनय अर्जुन कोई जानत नाय, अर्जुन भैया घर पे नान तो गुरु ने व्यूह रचाई दो जाई। अरे बिकट समैया भमर मिनैया भैया गिरो स्वर्ग से आय, अरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दीजो पार लगाई। दोस्तों इधर महाराज युधिष्ठिर रो रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अर्जुन को लेकर दक्षिण की ओर चले गए लेकिन यहाँ तो हाल ही बेहाल हो गया, प्रभु अर्जुन को लेकर जैसे बने घर आओ। इधर महाराज को व्याकुल जब देखा तो अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ निकला। आर सुनो रुदन जब धर्म पुत्र को जंगी जबर देख लल कर पारथ पुत्र सभा में गरजो तो मद में गज मारत चिंगारी। हिलन लगे तो धरती के नीचे से सगे तो दहलाई थे, इंद्र डोली गए इंद्रासन पे तो आसन हिलो तो दिगंबर क्यारी। हिलो कलेजा दुर्योधन को लीलिय पेट जात नहीं लारी। से दादाजी आप चिंता न करें। अरे दादा आज पिता घर नहीं चारों ओर घूम रहो काली और पिता निकल गए कुरुक्षेत्र से सन्मुख खड़ो तुम्हारे लाली। और अपने धनुष जोड़ जोड़ के बिन जोड़े दूं जोड़ जुड़ाए और कसम पिता के है तो लोहू की के चक्र व्यूह तोड़ दूं जाए। याद रहे राम शरण जब अभिमन्यु ने चक्र व्यूह तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा एक बात बता। तब भुजा पकड़ के धर्म पुत्र ने और सुत गोद लयो बैठा, देखो अगम व्यूह मेरे बेटा देखो न हुई है नैन उघार। खूनी नहर से घूमत है हम पर परो विपत्ति को जाल और दुख अथाह था नहीं मिल रही सन्मुख खड़ो हमारे काल। गोद खिलैया पारत छैया मत जा बिहु भेद वे लाल, खूनी नहर से घूमते हम पर रही मुसीबत छाई। धर्मराज ने पूछा, बेटा हम पांचों भाइयों में अर्जुन के अलावा चक्र व्यूह में तोड़ने का हाल किसी को ज्ञात नहीं, और तुमने पुत्रीय विद्या इस बाल काल में कहां से सीख ली? तो अभिमन्यु ने कहा कि दादाजी वो मेरे उस गर्भकाल की घटना है। जब मैं पलो गर्भ मैया के माता कछु रही अलसाए और चक्र व्यूह भेदन को वर्णन बाबुल मैये रहे सुनाए। गाथा में माता को बेरिन नींदन लयो दबाई और जाना जाना ही जाना था आना लयो नींदन खाए। जब तक छह दरवाजे टूटे तब तक मैया जागती रही, सातवें द्वार का वर्णन जब पिताजी ने किया मैया की आंखों में नींद आ गई और मैं मैया के साथ ही साथ गर्भ में सो गया। मैं सातवां द्वार नहीं तोड़ पाऊंगा लेकिन आप चिंता न करें। अरे जाना है तो ऐसी हालत में ताजी खून भरे फुंकार और आना है ऐसी सूरत में सबई शत्रु बने मुर्दारी। सोई भुजा फड़क रही है लड़बे को आज्ञा देव श्री महाराज। दोस्तों अभिमन्यु को चक्र व्यूह में जाने को त्याग जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो अपने पुत्र अभिमन्यु की भुजा को पकड़कर राजा युधिष्ठिर बोले, और भुजा पकड़ के गम में भर के धर्मराज ने कही सुनाई, मोई पीठ दिखाई जा तू कन्हैया बैसी मुख दिखाइयो आई। आई अर्जुन भैया घर पे नहीं बारो कुमर लड़न को जाए और हे जग स्वामी अंतर्यामी तुम को पुत्र रहे सो पाए। छोना नाहर की बरनी रखियो लाज विश्वाधारी। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार हुआ और इसके हृदय में एक भावना आई कि उत्तरा से आखिरी बार मिल लिया जाए, तो जब उत्तरा के शिविर में अभिमन्यु पहुंचे हैं, जो इनकी धर्म पत्नी थी, आबत देखो है प्रीतम को देवी बहुत गई हर साय, और सुंदर पलंग गद्दा मखमल को कर गई कंस ले बैठार। हाथ जोड़ की बोलन लागी रजानी के ठाट निहार, आफत आई किस छत्री की कहाँ को साज चले भरतार। आर सुनिए अभिमन्य भैंस के बोलो सुनो उत्तरा ध्यान लगाए कर, अरे द्रोण गुरु चक्राव्यूह रच दो भेदन रहते उसी को जाई। सोई एक कदम उठती जो समय भर के कर बे तिलक चली थी हर साई। जब देवी उत्तरा अपनी स्वामी को विजय तिलक करने के लिए आगे बढ़ी तो दोस्तों सामने से छींक हुई। सोई उत्तरा ने अपनी स्वामी के पैर पकड़ के कहा कि नाथ, ये वक्त युद्ध का जाने का नहीं। मोई छोड़ी अकेली जाबो पिया और लड़न को तुम्हाई अब मती जाबो, इत योबन अंग हिलोर भरे उमगे जी घातक बोल सुनाबो। काल के गाल में जाई रहे बस सोचे यही हम कंठ डरावे। जब उत्तरा बिलखने लगी तो अभिमन्यु ने कहा कि गोरी, सूर्य छिपे अदली बदली और चंद्र छिपे तिथि मा बसयाए, चोर छिपे बड़े भोर भये और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। पानी की बूंद पतंग छिपे और नीर छिपे ऋतु ग्रीष्म आए, कान आवाज परे रण की असली छत्री छिपी है न छिपाए। समझ गई उत्तरा कि अब नाथ मानेगा नहीं, तो चंदन और रोली लेकर के अपने स्वामी के मस्तिष्क पर तिलक किया और कहा कि पिया जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खट के पति जाई लड़ो नहीं शंका जरा दिल में तुम लइयो, काढ़ी की तेज लड़ो रण में दुश्मन की फौज को मार भगइयो। घर में अभिमन्यु की नारी कहे हंस के तुम भाग मेरो मत नाम ले जइयो। अरे कठिन समय है तो धर्म तो युद्ध है, क्या वो किया है लड़न के काज, ऐसे लड़ियों के समर भूमि में जैसे लड़त है कुही और बाज। अरे विजय हुई के जो साजन लोटो तीहे बिजरे माल पहनाई, यदि लड़ी जूझो जो कुरुक्षेत्र में तो मिले हैं स्वर्ग रे लोक में आई। अरे भुजा पूजी के गट्टी का कर दो, गौरी पुत्र है गणेश मनाई, चली सवारी के पारथ सुत की रक्षा करी है के शारदा माई। आरे पूर्वे क्षेत्र के मैदान में झंडन पर रही है के लालरी छाई, ए चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पे जयद्रथ वीर तो खड़ो हर साई। आरे पूर्वे क्षेत्र के मैदान में है घमस्यान रे नरेशन त्यार, एक कई कोश के चौगिरदा में नंगी चमक रही है तलवार। दोस्तों चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, अभिमन्यु को देख करके जयद्रथ आंखों में खून के शोले लेकर बोला, से क्या सब पांडव गए हैं नसाई, छोड़िए गोदरे कब मैया की कब से दूध जो पियो है नाई। अरे थोड़ी उम्र है तुम्हारी अब तेरी, ओछन बहते है दूध की धार, के मारे जय हो चक्रव्यूह के शमर की मार। सोई हसी अभिमन्यु कुमार कब बोलो, काहे को व्यर्थ है बघारो ज्ञान, है केवल इस जग दुनिया में सूर्यन पतन और उत्थान। पारथ शुतनी तो एकदम सजग करे है सरदार। दोस्तों याद रहे, जब जयद्रथ और वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर युद्ध का नजारा आया, उधर जयद्रथ सामने है इधर अभिमन्यु है, तो याद रहे कि छूटत कमान बान बंदूक और कोकबान, मुश्किल हो तो मुरचान हूं की ओट में। ताही समय अभिमन्यु हुकुम दे धावा कियो और दाबा बांध बेरन पे बीरन ले जोत में भर हुंकार उत धोसन की धधकार अरे कांप रहे सरदार गिरे जाए भट झोट में ताब दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे अरे घाव दे दे अरे मुख कूद परो कोट में। दोस्तों वीर अभिमन्यु जयद्रथ को बेहोश करके जब चक्रव्यूह कोट में कूद पड़ा अपने सारथी को लेकर के, इधर थोड़ी देर में जयद्रथ को होश आया, उसने द्वार को संभाल लिया। भीम और पांडवों की फौजी दरवाजे पर युद्ध करने लगी। द्वितीय द्वार पर जब पहुंचा अभिमन्यु तो गुरु द्रोणाचार्य वहां पर खड़े मिले। दास्तान सुने आप राठौर के शिष्य के द्वारा। अरे तय अभिमन्यु कोट में धस गौ द्रोण गुरु को करो प्रणाम और आशीर्वाद दो तो बेटा को दिल में गौ तो रंजगम छाई अपने शिष्य अर्जुन के पुत्र को जब युद्ध में आया हुआ देखा तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। अरे भरत सुत को कैसे महरू समर में आज हो तू अन्याय। अरे समझा था कोई समता को मरी है आज बड़ो सरदारी नहीं थी जू मृग छोना आए नहर केरी अंगार और दिल नहीं कहता आज लाड़ ले तेरो खून करूं सुकुमारी। अरे अधर्म से द्रोण को बचा ले धर्म की भीख दे सुत डारी लाड़ी ले बात तुम मेरी मानो काहे कुआज करत खूंखारी। बड़े हताश होकर गुरु द्रोणाचार्य अभिमन्यु से कहने लगे कि बेटा तुम लौट जाओ चक्रव्यूह कोट की लड़ाई घमासान है वे मौत मारे जाओ वे पुत्र तुम हमारे शिष्य अर्जुन के बालक हो। तो आंखों में खून के कतरे लेकर अभिमन्यु ने कहा दादा गुरु। अरे हसी अभिमन्यु कुमार तब बोलो हम आजादी के दीवानी और समर भूमि से लौट के जावे डूबे पार्थ पिता की सानी। अरे त्यागी निर्मोही हृदय में ममता गुरु रहे उपजाई जाए और दया आती है मेरे ऊपर तुम ही मती सामने आऊं। कहने लगा गुरुजी अगर हमारे ऊपर दया है तो आप रास्ता छोड़ दें। अरे इतनी कह के भारत सुत ने कीनो बाणन कोर संधान कई ए सर 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 करके सर छूटे कर दे द्रोण गुरु है रानी। सोई झड़ी लगाई दैति बाणन की जूझन लगे अरे खा ज्वानी दया चाल मचो है रड़े अंदर पीतत बीरन के रे घमशान और तू जो द्वार तोड़ पारत सुत तीजे पे जबर दई है ललकार। अरे सिंह दहाड़े जैसे वन में आओ दुशासन सरदार और ओ अभिमन्यु युद्ध में बेटा नाई बट तिलला खैरात जीवन को सौदा हुई बे में दिल में दया नेक नहीं आई और सारी उम्र तुम्हारी लख के बेटा हृदय रहो शप जाए और हाथ उठाने मेरे बचन पे लज्जा रही उम्र मोया दोस्तों याद रहे शत्रुव्यूह के तृतीय दरवाजे पर दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन मिला और अभिमन्यु को लौटने के लिए कहा कि पुत्र तेरा वध करने में हमें शर्म आती है। तो अभिमन्यु ने कहा कि चाचा श्री अरे फेरो हाथ मूछ दहनी पे पारस पुत्र महाबलधारी और बार बार लेना मत पापी अब तू दया हया को नामी आरे पकड़े केश हते द्रौपद के तब ना दया जगी दिल माई और जो न ल जाए चीर खींचते उन कर दया रही अब नाई खुले शब्दों में अभिमन्यु ने कहा कि शर्म तुम्हें उस दिन आनी चाहिए थी जब हस्तिनापुर की सभा में मां द्रौपदी की साड़ी खींच करके तुमने नग्न करने की कोशिश की थी उस दिन तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं थी। अरे बोली बोली सिर लागी है सीना फोर भाई बापारी सोई क्रोध में भर के दुशासन ने कीनो पार्थ पुत्र पे बारी और इता अभिमन्य धनुष टंकारो गज भी जोहर दो है दिखाए और धनुष काट दो दुशासन को मारे एक समान रिसाए अरे होई बेहोश गिरो धरती पे पुमरन द्वार तोड़ दो जाए और निधरक धस गो जो हाय बन में धस गो कुमर बीहु में जाए और चारों ओर ये पुर देखत है नैनन रहती लाल री छाय और छाई वीर रस रहो देही में मिल गए भूप सुयोधन राय दोस्तों तीसरा दरवाजा तोड़कर अभिमन्यु जब चतुर्थ दरवाजे पर पहुंचा है जहां पर युवराज दुर्योधन खड़ा है अरे तज की भूप तो आज दुर्योधन दई है बेटा पे तेग है चलाई ढाल अड़ाई के सुभद्रा नंदन खाली बार ये दो करवाई सुत भाजो भू परे सुयोधन राय अरे लक्ष्मण बेटा जो दुर्योधन को पहुंचो कुमर के सामने आय दोस्तों दुर्योधन अभिमन्यु के प्रथम हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाया युद्ध छोड़ के पीछे हटा। उसी वक्त दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुमार जो था वो अभिमन्यु के सामने आकर बोला अरे खून गर्म है पार्थ चाचा तो यह है गर्म रे सुयोधन राय अब जाच तो हो भारत में देख किन पेज राम रिसाई अरे शह से बाण अभिमन्यु छोड़े रथ में घिर गो है लखन कुमार ए संभल न पाओ के लक्ष्मण बेटा के तब तक हुक की दई है तलवार शीश तो गिरो धरती पे नीचे रुंड है गिरो भेराई छक्का छूटे के कोर बदल के कोई आज है बचैया नाई। दोस्तों दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का जब अभिमन्यु ने नरसंस वध चक्रव्यूह में किया तब तो कौरवों के छक्के छूट गए। जानत थे जा भारत में के कोई पार्थ बराबर नाई। अरे तब तक शकुनी के भागत सुन ले भूप है लगाए के कान। लखन कुमर और पुत्र दुशासन दोनों जूझ गए हैं मैदान। मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन गफलत की नींद सो रहा है, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन के पुत्र का वध अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में कर दिया। अरे दोस्तों अरे सुन दो खबर यो दुर्योधन की अखियां हो गई के कदम लाल। छाती ठोंके के कही दुर्योधन आएगा लला तुम्हारो काल। क्रोध में भर गए दुर्योधन ने कहा गुरुजी अरे दुर्बर शकुनी मित्र कर तुम फैलाए दे अब मोती को जाल। तब तक नहर अभिमन्यु ले कर जो महाकाल को काली। अरे कदम कर जो है कुरु क्षेत्र में पार्थ पुत्र महाबलधारी। आज जैसे सिंह दहाड़े पन में तो मत में गज मारत चिंगारी। ऐसी गरज कही है दंगल में तो जंगी जबर दई है ललकार। बबर शेर की तरह दहार करके अभिमन्यु बोला अरे विजय विजय लो विजय हो चुकी अंतिम दई है आवाज लगाई। इच्छा हो बे सो लड़ी बे को आबे नहीं तो लौटे सरदार। मेरे नौजवान साथियों चक्रव्यूह के दरवाजे छह अभिमन्यु ने तोड़ दिए और सातवें द्वार पर जाकर जब बबर शेर की तरह दहर के कहा कि केहरी का लाल हो तो युद्ध में लड़ने आए नहीं तो पार्थ का पुत्र विजयश्री लेकर के जा रहा है। दोस्तों उसी वक्त दुर्योधन ने भेद नीति ऐसी चक्रव्यूह में चली कि अभिमन्यु के सामने जाकर बड़ी मृदुल भाषा में वो कपटी बोला और रामशरण ये भी ध्यान रहे कि नीच की नबन हमेशा दुखदाई है। अरे कर के गबड भूप दुर्योधन हंस के कहती कुमार से जाए। अरे क्रोध अग्नि जो दिल मेरे में के नहीं माधव सके ते बुझाई। अरे वही आग तेरे जोहर पे बेटा ठंडी होती दिखाए। और क्रोध बैरती बोची नगारी मोह में कुमर बदलती जाई। जिस युद्ध को योगीराज भगवान श्री कृष्ण भी नहीं रोक पाए, आज तेरी वीरता देख करके वो बदले और वैर की आग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है पुत्र, और इस युद्ध को मैं यहीं पर विराम करना चाहता हूं। अरे दिल कहता है कि तेरे गुण पे दे दूं सकल राज सरताज, और आजा गोद कुमार चाचा की तो कुटेर रहे महाराज। जब दुर्योधन को मधुर भाषा बोलते हुए सुना तो अभिमन्यु प्यार के आंखों में आंसू भर के बोला कि चाचा श्री, हरे पार्थ पुत्र व्यास के बोलो के धन धन चाचा हमारे भागी। अरे जो थोड़े से हीरे जौहर में बुझ गई जन्म भरे की आगी। अरे है सच्चो अनुराग आपको तो सुतया जो तूने उछार, अरे गोद पसारी ले चाचा जी बेटा बैठन को है तैयारी। अरे दुर्योधन बोलो तो बेटा से दिल में संशय होती हमारी कई, जो सच्चे दिल से आते हो के तो तुम फेंक दे हथियारी। दोस्तों याद रहे दुर्योधन ने कहा कि अभिमन्यु यदि श्राप द्वेष की आग जो है दूर करना ही चाहते हो पुत्र तो अपने हथियार त्याग दो और इस युवराज दुर्योधन की गोद में आकर बैठ जाओ। भक्तों विनाश काले विपरीत बुद्धि मौत की घड़ी आ चुकी थी, अभिमन्यु की बुद्धि अपने विचारों के बिल्कुल प्रतिकूल चली गई। सोया समय आ गौ नाहर को कीनो तेरा को फिर राम, अरे कहा चेतनी अरे चंड के अब तू कर जीवन विश्रामी। अरे रक्त पिया है रणवीरों का पहुंची घड़ी शांति की आय, अरे बिछुड़े हृदय को स्वागत है अम्बा विदा हो हर साई। अरे धरती माँ तेरी साक्षी है प्रेम में बंधन जात सुकुमार, और इतनी कह के पारत सुत ने अपने त्याग दे ते हथियारी। मेरे नौजवान दोस्तों जिस समय वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन की कूटनीति में डूब करके अपने हथियार त्याग दिए, लेकिन दोस्तों ये क्या क्षण भी नहीं बीता पासा पलट गया। अरे पासा पलटो मच गयो रासो दे दयो हुकुम सुयोधन राय, अरे घेरो करण निकल ना जावे गाय पूरा की देर लगाए। शकुनी करण भूप दुर्योधन गर्जो दुशासन बलधार, अरे अश्वत्थामा द्रोणाचार्य कृपाचार्य गही तलवार, अग्नि बाणी अब छूटन लागे सुत चहुलंग को रहो निहार। दोस्तों दुर्योधन की आज्ञा पा करके सात महारथियों ने जब वीर अभिमन्यु को चक्र व्यूह में चारों दिशाओं से घेर लिया, अभिमन्यु समझ गया कि मौत की घड़ी तो खोपड़ी पर आ गई, धोखा मेरे साथ में हो गया और अपनो ही तैसी कोई ना दिखो तब शुद्ध करी विश्व आधार। अरे डूबे नाव समर सरिता में तुम बिन पार करे कुकर तारी। अरे छाई भीरर शगो देही में बच गए रोम रोम हनुमान। रथ को चक्र हाथ में लेके पिली गौ समर भूमि मैदानी। दोस्तों सभी हथियार तो दुर्योधन ने पहले ही रखवा लिए थे। अभिमन्यु के सामने रथ का एक चक्र पड़ा था। बबर शेर ने वो चक्र उठाया। जाही अलग को झुका तो के हरी बन बस भाजे पीठ दिखाई। अरे सोई गति है चक्राव्यू में क्षत्रिय भाजत प्राण बचाई। अचूक करण ने मारो चक्कर गिरो भूमि पे जाई। और सात महारथी आगे बढ़ गए अकिलो कुमर लो तो भिरवाई। अरे अकिलो कुमर कोट में घिर गो छूटत सात सात हथियार। और मरती बार कही बेटा ने तुमको बार बार धिक्कारी। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देख करके अभिमन्यु आंखों में आंसू भर के बोला, गुरुजी ये धोखा आपके रहते हुए मेरे साथ हो रहा है, ये अन्याय। अरे क्यों दादा गुर समर क्षेत्र में ये है धर्म युद्ध को न्याय। और हम ही निहत्थे पुरु क्षेत्र में मेरे साथ हो तू अन्याय। और नीची नजर भई गुरु जी की बेशक चलता हते हथियार। और प्रेम सिंधु में ब्राह्मण डूबो नैनन बहत नीर की धारी। दोस्तों जब ये शब्द द्रोणाचार्य ने सुने तो आंखें आंसुओं से भर गईं। हथियार की चोट भी अभिमन्यु के ऊपर कर रहे थे और आंखों से आंसू की धार भी बह रही थी, क्योंकि शिष्य के पुत्र के साथ में अन्याय हो रहा था। बोले हैं द्रोणाचार्य जी, अरे छाया सूरज पे पड़ जावे चाहे चांद स्याह पड़ जाए। और पर कलंक ना मेरो छूटे सुत हम समझ लई मनमाई। और विवश ब्राह्मण रोदन कर कर अपने चला रहो हथियार। और जहां जहां बाण लगत बेटा के बहब चलती खून की धारी। और अपन हितैषी कोई न देखो तब शुद्ध कही विश्व आधारी। अर सुरजन सुरजन नभ मंडल से कर रहे पुष्पन की बौछारी। दोस्तों अभिमन्यु की आखिरी श्वास बाकी थी। साथ साथ और से हथियार चल रहे थे। जहां पर पुत्र के बाण लगता था दोस्तों शरीर से खून की धार निकल पड़ती थी। आखिरी श्वासों में अभिमन्यु ने अपनी कुल को प्रणाम किया। हरे तात मात है चचा बंधु मेरे छूटो आज सकल परिवार। ओ प्रिय उत्तरा नमस्कार है तेरो छूटी रहो सिंगारी। अरे चचा भीम मेरी याद रहे तो बदलो जा चलियो चुकाई। और जब तक प्राण रहे देही में रण से मुख मोड़ियो नाई। दोस्तों आखिरी श्वासों में रोदन करके अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र में कहा और शांत न रखियो कुरुक्षेत्र में जब तक हो न सफल फरियाद और खून बहियो धर्म युद्ध में जोल न हिंद हो आजादी। आर्य भूमि शैन तो ने नमूद के माया मोह दो बिसराई और वीर निलारो भारत माँ को सुरपुर मध्य बसोय बजाई। सोई ओम नाद कर ध्यान ब्रह्म को पारथ पुत्र भोय अवशान और निठुर नीचो कौरव दल के फौरन बाजन लगे निशानी। दोस्तों याद रहे अभिमन्यु वीर गति को पाकर जब स्वर्ग धाम के लिए चला गया और उधर महाराज युधिष्ठिर के अंगरक्षक सोच रहे थे कि थोड़ी देर पहले वीर अभिमन्यु शत्रुव्यूह में दहाड़ रहा था लेकिन ये कौरवों के झंडे कैसे ऊंचे उठ गए। आरे क्षण भर पहले पारक छैया गर्जत तो सिंह उन्हार और अरिदल भजत तो पीछे कुयब का रचि विश्व आधारी। अर्पजत नगारे कौरव दल में झंडा श्वेत रेत फहराए गई और धक धक होती जिगर मेरे में विपत्ति की घटा रही मंडराई। दोस्तों याद रहे इधर महाराज युधिष्ठिर को हर क्षण खबर मिल रही थी कि वीर अभिमन्यु ने 6 दरवाजे तोड़ दिए हैं तो महाराज बड़ी खुशी में बैठे थे। तब तक दोस्तों नकुल ने दौड़ करके महाराज युधिष्ठिर को सूचना दी कि भैया गजब हो गया। अरे भैया गजब भो भारत में कुल पोहियो बंटा डार और 3 बार जय करी व्यूह में छोड़ो नाई अजय सरदारी। आरे कपट जाल दुर्योधन के में फस गो कुमर प्राण आधारी और सात सूरमा एक मिल हुई के फेंको ददा कपट को जाली। आंखों में आंसू भर के नकुल ने कहा कि भैया वीर अभिमन्यु वीरता से लड़ रहा था लेकिन उस नीच पापात्मा दुर्योधन ने बेटा के साथ में धोखा कर दिया। सात सूरमा एक मिल हुए के फेंको लला पे कपट को जाली भारत छैया के कुमर कन्हैया तो सुरपुर बसो है हमारो लाली। अरे हिलो कलेजा के धर्म राज को लीली पेट में जाती नहीं लारी। अरे धक धक होने तो लगी जियरा में के पंजा खेच तो रहे करतारी। अरे हाय अभिमन्यु कढ़िया के मुख से धरती पे गिरे ही तमारो खाई मूर्छित भूप तो भय भारत में दल में सुन रे सान पड़ जाई।